नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम जिस उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से शुरू होता है। क्या आप कभी अपने हैप्पी प्लेस पर वापस जा सकते हैं, अपनी सबसे सुखद जगह पर?
एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमें पुरानी यादों के गलियारों में ले जाता है ना।
बिल्कुल।
और एमिली हेनरी का उपन्यास हैप्पी प्लेस इसी सवाल की बहुत ही मार्मिक और ईमानदारी से पड़ताल करता है।
हाँ, एमिली हेनरी को समकालीन रोमांस की एक बेहद महत्वपूर्ण आवाज़ माना जाता है, और मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण ये है कि वो रोमांस को सिर्फ दो लोगों की कहानी तक नहीं रखती।
सही कहा।
वो इसे दोस्ती, करियर और पहचान के मतलब बड़े सवालों से जोड़ती हैं, जैसा कि हम हैप्पी प्लेस में देखते हैं।
हाँ, उनकी लेखन शैली में हास्य और दिल को छू लेने वाली भावनाओं का एक अद्भुत संतुलन है।
ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि उस दर्द की भी है जो तब होता है जब हम उन लोगों और जगहों से आगे बढ़ जाते हैं जो कभी हमारी पहचान हुआ करते थे।
बिल्कुल। और वो सहस्राब्दी पीढ़ी यानी मिलेनियल जेनरेशन के संकटों को बहुत प्रामाणिकता से दिखाती हैं। वो पीढ़ी जो अक्सर एक आदर्श जीवन का प्रदर्शन करने के दबाव में जीती है।
तो चलिए आज इसी उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों की भावनात्मक यात्रा और दोस्ती, प्यार और आत्मखोज के गहरे विषयों में उतरते हैं।
तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो
जो किसी सपने जैसी लगती है।
हाँ बिल्कुल, नॉट के लैंडिंग, मेन का एक तटीय कॉटेज। ये जगह कॉलेज के दोस्तों के एक समूह के लिए लगभग एक दशक से कह सकते हैं कि उनकी गर्मियों की छुट्टियों का ठिकाना रही है।
मतलब समंदर की महक, पुरानी यादें, हंसी मजाक, वो सब कुछ।
हाँ, अनगिनत यादें।
और ये कॉटेज सिर्फ एक लोकेशन नहीं है ना, ये अपने आप में किरदार जैसा है।
बहुत अच्छी बात कही आपने। ये उनकी दोस्ती का प्रतीक है, उनकी जवानी के सुनहरे दिनों का
और उस आदर्श अतीत का जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं।
बिल्कुल। लेकिन इस खूबसूरत पृष्ठभूमि के पीछे एक गहरा राज छिपा है।
अच्छा।
कहानी के मुख्य पात्र हैरियट, जिसे सब हैरी कहते हैं
जी,
और उसके पूर्व मंगेतर वैन कॉर्नर का 5 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका है।
5 महीने पहले, और उन्होंने किसी को नहीं बताया।
किसी को भी नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसे उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों से भी छुपा कर रखा है।
और यहीं से कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो शुरू होता है।
हाँ, उन्हें पता चलता है कि ये उस कॉटेज में उनकी आखिरी छुट्टियां हैं क्योंकि वो घर बिक रहा है।
तो अपने दोस्तों की इस आखिरी याद को बचाने के लिए
वे एक सप्ताह तक एक खुशहाल सगाईशुदा जोड़े होने का नाटक करने का फैसला करते हैं।
ये जो खुशी का प्रदर्शन है यही उपन्यास की आत्मा है, मुझे लगता है।
हाँ, और ये सिर्फ इन किरदारों की कहानी नहीं है, ये आज के सोशल मीडिया के दौर का एक प्रतिबिंब है
जहां हर कोई एक आदर्श जीवन, एक आदर्श रिश्ता, एक आदर्श दोस्ती
का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर महसूस करता है। उपन्यास इसी दिखावे के पीछे की कीमत पर सवाल उठाता है।
चलिए किरदारों से शुरू करते हैं, खासकर हैरियट से जो कहानी का भावनात्मक केंद्र है।
हैरियट या हैरी, देखा जाए तो कागज पर एक आदर्श जीवन जी रही है। वो एक सफल सर्जिकल रेजिडेंट है,
लेकिन अंदर से
वो एक ऐसी इंसान है जो दूसरों को खुश करने के लिए जीती है, जिसे अंग्रेजी में क्रॉनिक पीपल प्लीजर कहते हैं।
मतलब वो टकराव से इतना डरती है कि अपनी असली भावनाओं को हमेशा दबा देती है।
बिल्कुल। उसकी पूरी यात्रा इसी दिखावे के मुखौटे को उतारकर एक प्रामाणिक जीवन जीने की है।
और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि उसका साथी व्यान, वो बिल्कुल विपरीत समस्या से जूझ रहा है।
एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे।
हाँ, वो अपनी प्रामाणिकता, अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब किसी के प्यार के लायक नहीं है।
आपने बहुत खूबसूरती से इसे समझाया। व्यान बाहर से आकर्षक, खुशमिजाज, सबका पसंदीदा दिखता है, पर अंदर ही अंदर वो अपने पिता की मृत्यु के गहरे दुख
और अपनी पीएचडी छोड़ने के बाद वो असफलता की भावना से टूट चुका है।
हाँ, उसने हैरियट को खुद से दूर कर दिया। उसे लगा कि उसकी अपनी टूटन हैरियट की चमक को कम कर देगी।
तो उसकी यात्रा अपने दुख का सामना करने की है
और बाहरी सफलता से परे अपने आत्ममूल्य को फिर से खोजने की है।
लेकिन ये कहानी सिर्फ हैरियट और व्यान की नहीं है, ये उनके दोस्तों के समूह की भी है।
हाँ, उनका फाउंड फैमिली, और यही बात इस कहानी को और जटिल बनाती है।
कौन कौन है समूह में?
समूह में है सबरीना, जो एक तरह से ग्रुप की व्यवस्थापक है। वो सब कुछ नियंत्रण करना चाहती है,
लेकिन ये नियंत्रण असल में उसकी अपनी असुरक्षाओं को छुपाने का एक तरीका है।
सही कहा। उसके साथ है उसका दयालु मंगेतर पार्थ, और दूसरी तरफ है क्लियो, एक स्वतंत्र विचारों वाली कलाकार
जिसका सबरीना के साथ हमेशा एक तनाव बना रहता है।
हाँ, नियंत्रण और आज़ादी के बीच का टकराव, उनके साथ किमी भी है, क्लियो की प्रेमिका, जो समूह में थोड़ी नई है।
और मजेदार बात यह है कि ये सभी दोस्त भी अपनी कॉलेज की दोस्ती की एक एक आदर्श छवि से चिपके हुए हैं, है ना?
बिल्कुल, वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि वे सब सालों में कितने बदल चुके हैं, एक दूसरे से कितने अलग हो चुके हैं।
तो उनका रिश्ता भी पुरानी यादों के सहारे ही चल रहा है।
तो वे इस झूठ को, उस दिखावे को कैसे बनाए रखते हैं? कहानी में ये कैसे सामने आता है?
कहानी की संरचना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखिका कहानी को दो समय सीमाओं में बताती हैं।
अच्छा, कैसे?
एक है वर्तमान, जिसे रियल कहा गया है, और दूसरा है अतीत के सुखद क्षण, जिन्हें हैप्पी कहा गया है।
तो एक तरफ तनाव।
हाँ, वर्तमान में हैरियट और व्यान के बीच की अजीब खामोशी और तनाव, और तुरंत हमें एक हैप्पी अध्याय में उनके सहज प्यार और खिलखिलाते अतीत की झलक मिलती है।
इससे पाठक के लिए उनके रिश्ते का दाव बहुत ऊंचा हो जाता है।
बिल्कुल, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है, और ये वर्तमान के दर्द को और गहरा बना देता है।
तो वे झूठ बोलने के नियम बनाते हैं।
हाँ, जैसे एक ही शापित बिस्तर साझा करना, जो अपने आप में एक विडंबना है।
ये उनकी जबरन निकटता और भावनात्मक दूरी का एक भौतिक प्रतीक बन जाता है।
हाँ, एक ही बिस्तर पर लेटकर भी वे एक दूसरे से मीलों दूर हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से मुस्कुराना है, हाथ पकड़ना है,
लेकिन जैसे ही वे अकेले होते हैं, उनके बीच एक बर्फीली दीवार खड़ी हो जाती है।
लेकिन इस तरह का दिखावा ज्यादा देर तक तो नहीं टिक सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और वही दरारें कहानी को आगे बढ़ाती हैं।
कैसे?
सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उनका ड्रामा टूटने लगता है। कोई पुरानी आदत, कोई अंदरूनी मजाक, पुराने प्यार के ये पल अचानक उभर आते हैं।
और फिर तुरंत ब्रेकअप की दर्दनाक यादें उन्हें घेर लेती हैं।
हाँ, और दोस्तों को भी शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनके रिश्ते का सच नहीं है जो सामने आने वाला है।
नहीं, बल्कि पूरे दोस्त समूह के रिश्तों का सच भी सतह पर आ रहा है।
कहानी का चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स कब आता है?
वो तब आता है जब एक बहस के दौरान हैरियट और व्यान के ब्रेकअप के असली कारण सामने आ जाते हैं।
लेकिन बात यही नहीं रुकती होगी?
नहीं, इसके तुरंत बाद सबरीना और क्लियो के बीच वर्षों से दबा हुआ तनाव एक बड़े झगड़े के रूप में फट पड़ता है।
तो वो आदर्श दोस्त समूह का भ्रम टूट जाता है?
पूरी तरह टूट जाता है। उस क्षण यह पता चलता है कि हर कोई किसी न किसी तरह का अभिनय कर रहा था।
तो जब ये सारा दिखावा, सारे झूठ टूट जाते हैं, तब क्या होता है?
ये टकराव एक तरह की शुद्धि का काम करता है। झूठ से मुक्त होकर हैरियट और व्यान पहली बार महीनों में ईमानदारी से बात करते हैं।
तो सच सामने आता है?
हाँ, व्यान अपने अवसाद और दुख के बारे में बताता है, और हैरियट पहली बार स्वीकार करती है कि वो अपने करियर से कितनी ज्यादा नाखुश है, कि वो ये जिंदगी अपने माता पिता के लिए जी रही है, अपने लिए नहीं।
और यहीं पर वो दिल को छू लेने वाला एहसास होता है कि उनका रिश्ता प्यार की कमी से नहीं,
बल्कि संवाद की विफलता से टूटा था।
ये उपन्यास एक मार्मिक चेतावनी है कि कैसे अनकहे शब्द, गलतफहमियां,
व्यान मोंटाना वापस जाकर फर्नीचर बनाने के अपने जुनून को अपनाता है, एक ऐसा काम जो उसे उसके दिवंगत पिता से जोड़ता है।
तो ये कहानी उस साहस की भी बात करती है जो एक ऐसे जीवन को छोड़ने के लिए चाहिए जो कागज पर तो उत्तम दिखता है,
लेकिन भीतर से खोखला महसूस होता है।
ये अपनी पहचान को दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर रखने के बारे में।
बिल्कुल, वे एक नए, ज्यादा स्वस्थ और ईमानदार रिश्ते की शुरुआत करते हैं, और दोस्त समूह भी पुरानी यादों के सहारे जीने से आगे बढ़कर एक नई, अधिक सच्ची समझ विकसित करता है।
वो स्वीकार करते हैं कि वे बदल गए हैं, और उनकी दोस्ती को इस बदलाव को अपनाना होगा।
तो इन सब विषयों का निचोड़ क्या है? उपन्यास हमें क्या संदेश देना चाहता है?
मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्चा संबंध केवल वल्नरेबिलिटी,
भेद्यता,
हाँ, भेद्यता और असहज ईमानदारी से ही मिल सकता है।
जब हम अपनी कमजोरियों और अपने सच को साझा करने का साहस करते हैं, तभी हम वास्तव में दूसरों से जुड़ पाते हैं।
और यह दोस्ती की विकास की भी कहानी है। दोस्ती को जीवित रहने के लिए विकसित होना चाहिए।
ये केवल पुरानी यादों और अतीत के सहारे नहीं चल सकती।
अंत में ये कहानी हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारे लिए खुशी का वास्तव में क्या मतलब है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पूर्णता में नहीं, बल्कि खुद के और दूसरों के प्रति ईमानदार होने के साहस में निहित है।
और ये कि हमारा हैप्पी प्लेस शायद कोई जगह नहीं,
बल्कि वे लोग हैं जिनके साथ हम अपने सच्चे, बिखरे हुए स्वरूप में रह सकते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए कत्री फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।